नमस्कार सुतो छिंदवाड़ा वाले पदोस योगेश, क्योंकि जिंदगी
हेलो
जरूरी इस विषय पर जल संरक्षण। आज हमारे साथ पीयूष जी जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, मोबाइल आने पर स्वागत सर आपका।
नमस्कार सर
जिस
जी।
तरीके से ग्रीष्म काल में निरंतर भूगर्भीय जल स्तर नीचे जा रहा है, जिसके कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पीने योग्य पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, साथ ही पीएचई विभाग द्वारा भी इसकी गुणवत्ता व पानी की शुद्धता के लिए कोई जांच का पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हो पाया है। पीयूष जी,
जी
इस तरीके से जल संरक्षण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
जी सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि पृथ्वी के सभी जीवों के लिए जल एक बहुमूल्य संपदा है। इसके बिना जल की कल्पना भी, इसके बिना जीवन की भी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जल संरक्षण जो है हमारे लिए उत्तरदायित्व नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। क्योंकि पृथ्वी पर सिर्फ 70% जल है, परंतु उसमें पीने योग्य सिर्फ 3% बचा हुआ है। इसलिए जल संरक्षण बहुत ज्यादा हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जी सर
और सर, क्या आपके क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही वृक्षारोपण
जी
को संरक्षित करने में क्या क्या भूमिका अदा की जा रही है? क्योंकि वृक्षारोपण तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उसके
जी
संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
जी जल संरक्षण के लिए तो यहाँ हमारे गांव के आसपास ही एक डैम बन रहा है, एक नदी पर बांध बन रहा है, जिसके वजह से भी पानी की बहुत बचत होगी। और रही बात वृक्षारोपण की, तो इसके पहले वृक्षारोपण तो कर देते थे, वृक्षारोपण करके नगर पालिका नगर परिषद जो है वो वृक्षारोपण करके छोड़ देते थे वृक्षों को वैसे ही। तो उनको उनको जो जीव जो है यहाँ के जो पशु है वो खा रहे हैं। एक बार लगा कि इन्होंने अपनी कर्तव्य समझ के छोड़ दिया, पर उनका इतना कर्तव्य ये भी है कि वो रोज उनको पानी दे, उसमें विभिन्न प्रकार की जालियां या कांटों से उनको संरक्षण करे जब तक वो बड़े नहीं हो जाते वो पेड़। क्योंकि बारिश के पानी के लिए, बारिश बारिश होने के लिए वृक्षों का होना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा अभी वृक्ष कट रहे हैं और लोग वृक्षारोपण भी नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है।
जी,
जी
क्या सर आपके क्षेत्र में जो भी जल के संसाधन हैं,
जी
एक शुद्ध जल मिले इसके लिए क्या पर्याप्त मापदंड पीएचई विभाग द्वारा क्या पानी की जांच हो रही है? क्या उनकी जांच करके लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि ये पानी शुद्ध है, या इसमें कुछ और शुद्धिकरण के लिए कोई प्रक्रिया बताई गई, ऐसे कुछ जानकारी?
जी अभी मेरे जानकारी में अभी ये कोरोना के लॉकडाउन में ही जल संरक्षण के लिए और जल के शुद्धिकरण के लिए एक संयंत्र लगाया गया है गांव की नदी पर ही, जिसकी वजह से जल जल के शुद्धिकरण का काम भी हो रहा है। और पूरे गांव में पाइपलाइन के थ्रू वाटर प्योरिफिकेशन के वजह से पानी शुद्ध ही आ रहा है गांव में। इसलिए गांव में पानी की तो कमी नहीं है, परंतु आगे की दृष्टि को देखते हुए जल को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जल हम बचा नहीं सकते, जल हम बना नहीं सकते, जल को केवल बचा सकते हैं। जी
किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से ग्रीष्म काल में कई ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति देखने को मिल रही है, क्या
जी
आपके आसपास के में स्कूल हो, आंगनवाड़ी हो, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मरीजों को और स्कूल में बच्चों को जल मिल पा रहा है?
जी यहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो कोई कमी नहीं है जल की, परंतु आजू बाजू के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे जो पहाड़ी इलाके हो जाते हैं, वहां पर जल पहुंचने में भी समस्या होती है। वहाँ जैसे ग्रीष्म कालों में वहाँ पाइपलाइन के थ्रू बोलिए या तो फिर नलों के थ्रू जितना पानी नहीं मिल पाता। जैसे पिछले बार 2 साल पहले ही यहाँ पर इस गांव में भी, हमारे गांव में भी कुएं सूख गए थे, नदी पूरी सूख गई थी, उसका लोगों ने परिणाम देखा भी था। इसलिए जल संरक्षण के लिए जिम्मेदार लोगों ने रहना भी चाहिए। बाकी यहाँ की जो व्यवस्था है वो तो परिपूर्ण है। जी
क्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा, पीएचई विभाग द्वारा क्या जल संरक्षण को लेकर कोई तरीके अपनाए गए हो, जाकि जो कि जो जिस तरीके से अशुद्ध जल मिलता है उसके शुद्धिकरण के लिए कोई प्रयास हो सके, इसके लिए कोई जानकारी?
जी उसके लिए भी जैसे लाल दवा, कुएं में जो डालने की लाल दवा है, या फिर जो पानी है उसके साथ वो पानी शुद्ध करके ही मिल रहा है अभी। और जल शुद्धिकरण भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो भी लगाया गया है, उसके वजह से जल के अशुद्धि का कोई कारण नहीं है फिलहाल
जी, नहीं,
यहाँ।
इसके लिए कोई तरीके बताए गए हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, ये पूछ रहा था।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा बस यही बताया कि जैसे पोटेशियम परमैंगनेट आती है कुएं में डालने की लाल दवा, इसका उपयोग करने के लिए बताया है। और पानी जैसे उबाल के पीना चाहिए घर में, तो वो भी तरीके बताए गए हैं। अपनाने के लिए, ऐसे
जी
कई प्रकार के तरीके स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी बताए हैं। जी
क्या मानव ने अपने स्वार्थ के लिए जिस तरीके से
जी
अवैध उत्खनन कर रहा है, तो इसके कारण भूगर्भीय जलस्तर पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले दिनों में और कितना?
मानव तो जितना मिले उतना कम है, क्योंकि वो जल की बर्बादी इतना ज्यादा अधिक अत्यधिक कर रहे हैं। जैसे शावर लेंगे तो उसमें घंटों तक शावर ही चलते रहेगा, बहुत देर तक शावर चलते रहेगा, उसकी वजह से बहुत ज्यादा, जहाँ एक बाल्टी नहाने के लिए लगता है वहाँ ये लोग 8 या 10 बाल्टियों का उपयोग हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता शावर में। उसकी जगह बाल्टी और मग का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कार वॉश के लिए हम देखते हैं कि पाइप का उपयोग करते हैं, पाइप कंटिन्यू चालू रहता है, पूरा पानी वेस्ट जाता है, उसके जगह आप कपड़ा गीला करके कार को आप वॉश कर सकते हैं, गीले कपड़े का उपयोग। जैसे ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हैं लोग, जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग नहीं करते, फ्लश कर देंगे तो बहुत लीटर में पानी बहा देंगे। ये भी बहुत समस्या है जो मानव को समझना चाहिए। जी सर,
कई आपके क्षेत्रों में भी देखने को मिला होगा, या नगरीय
जी
निकाय हो या ग्रामीण क्षेत्रों में नलों में टोटियां नहीं लगाते और लोग इस
जी
कारण लापरवाही कारण कई हजारों लीटर वेस्टेज पानी चला जाता है। इसके लिए क्या
जी
संदेश देना चाहेंगे?
जी मैंने अभी यही कहा कि जैसे लोग जहां आवश्यकता न हो वहां पर भी जल का उपयोग करते हैं। मेरा ये कहना है कि कोई जल यदि उपयोग में आप ला रहे हैं, उसका अगर ज्यादा से ज्यादा उपयोग भी करना है, तो जैसे कोई अपशिष्ट पदार्थों को आप जैसे धो रहे हैं, या सब्जियों को धो रहे हैं, या फिर आरओ का अपशिष्ट पानी बचता है, कई लोग आज जल की शुद्धिकरण के लिए आरओ लगाते हैं, तो उसका उपयोग आप बागवानी के लिए कर सकते हैं। जैसे वो जल आप पेड़ों को दे सकते हैं, पौधों को दे सकते हैं, या और कार्यों में उपयोग ला सकते हैं। ये मेरा एक संदेश मैं अगर देना चाहूंगा।
जी, मेरा अंतिम
जी
सवाल है, एक
जी
किस तरीके से किसान भी जल संरक्षण में योगदान दे, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए किसान ने? एक
ये किसानों के द्वारा भी जैसे छोटे छोटे तालाब बना सकते हैं अपने खेतों में, या फिर बारिश का पानी जमा कर सकते हैं। जैसे पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए, आप खेतों में तो ज्यादा पेड़ नहीं लगा सकते, पर खेतों की जो पूरी बॉर्डर है उनमें आप बड़े वृक्षों को लगा सकते हैं, क्योंकि वृक्ष जो है वो बारिश के पानी को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसके वजह से अत्यधिक वर्षा होने की संभावना रहती है। पर जैसे जैसे वृक्षों का काटना चालू है, लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि वृक्षों के काटने से भी जल का जल जल या बारिश आने में समस्या होती है।
इससे
जी
ऊपर एक सवाल मेरा आपसे आ गया
जी
कि वर्षा के जल का संरक्षण किस तरीके से करें और उसके आम जीवन में किस तरह उपयोग करें?
वृक्षा के जल का संरक्षण, जैसे वृक्षा का जल यदि है तो आप छोटे तालाब जैसे किसान लोग बनाते हैं, या जैसे ऊपर हम लोग छत के ऊपर भी ऐसे कुछ टब रख सकते हैं, या उसका जो पानी जो वेस्ट हो रहा है वो घर के नीचे एक कम जो बना के टाके नुमा एक बड़ी आकृति बना के आप उसमें जल संरक्षण कर सकते हैं। वो जल आप बाहरी उपयोग के लिए उपयोग कर सकते हैं, पीने को छोड़ के, जो जल जमा हो रहा है बाहर।
जी,
जी
तो ये
बारिश का पानी मुख्य है, जमा करके रहेंगे तो वो जो जल है वो उसका जमीन में भी रिसा होता है, उसके आजू बाजू का भी जो क्षेत्र है वो भी फिर जो अच्छा रहता है, जो आजू
जल
बाजू के
को
जल के
बढ़ाने
लिए,
में बहुत अधिक
हाँ
योगदान देता है, महत्वपूर्ण।
जी, वो फसल के लिए भी अच्छा रहेगा, आपकी जमीन को भी उर्वरक क्षमता अच्छी देगा, उसकी वजह से फसल का भी फायदा होगा, फसल अच्छी होगी, इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं रहेगी फसलों को भी।
जी,
जी
कि जिंदगी है जरूरी, इस विषय पर पीयूष जी ने जल संरक्षण को लेकर अपनी राय साझा की। पीयूष जी, मोबाइल
जी
समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी बहुत धन्यवाद आपका भी।
बड़ा भाई, इन सबका दोस्त योगेश।